लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। हम सब के बीच में आदरणीय राजयोगिनी शीलोदी दीदी विराजमान है, एक ऐसी हस्ती जिन्हें स्वयं भगवान ने वरदान दिया है कि आपकी जीभा पर सदा कौन विराजमान है, विद्या की देवी सरस्वती, और आप कौन है, हर की पौड़ी है। ऐसे वरदानों से स्व स्वयं भगवान ने जिन्हें सजाया है, ऐसी दर्शनीय मूरत, धारणा मूरत हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। छोटी सी आयु में ही 12 वर्ष की आयु में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और आपके लिए बहुत गौरव का विषय है कि स्वयं ब्रह्मा बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ और उसके बाद तो आप लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते रहे और 1969 में मुंबई यूनिवर्सिटी के बीएससी की एग्जाम्स देकर आप मधुबन पहुंच गए। बाबा तो जनवरी में अव्यक्त हो गए थे 1969 में और आप मई के आसपास अपने एग्जाम्स देकर बिना रिजल्ट का इंतजार किए यहाँ पहुंच गए और जो पहली टीचर्स ट्रेनिंग हुई उसमें आपने हिस्सा लिया, भाग लिया और एक टीचर के रूप में आप तैयार हुए और उसके बाद बाबा ने आपको सेवाओं के लिए विविध स्थानों पर भेजा। आरंभ में आप राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश की धरनियों पर जाकर अपनी सेवाएं दी, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और उसके बाद 1976 में जब आप यहाँ आए तो एक सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा था और वो अवसर था दादी जी की तरफ से कि बहुत हो गई देश विदेश की धरनी की सेवाएं, अब हेडक्वार्टर में रहकर ही आपको सेवाएं करनी है। तो 1976 से आप इस मधुबन धरनी पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, हमारे मुख्य इंग्लिश इंटरप्रेटर हैं जो बाबा की मुरलियां चलती है उनका लाइव ट्रांसलेशन आप करते हैं और साथ साथ पूरे साल भर में इस कैंपस में जो भी ज्ञान योग के प्रोग्राम चलते हैं उनके आप कोऑर्डिनेटर हैं। जैसे ये भट्टी इस सीजन की आखिरी भट्टी है, अप्रैल से चालू हुआ यह सिलसिला और अब सितंबर में ये ख़त्म होने जा रही है, तो ऐसी भट्टियों के को भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं और इसके बाद विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम चालू होंगे तो उनके भी ज्ञान योग के प्रोग्राम आप ही कोऑर्डिनेट करते हैं। और मुख्य रूप से जो वर्तमान में रोल है दीदी का जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम सभी जानते हैं हमारी दादियाँ अव्यक्त होती चली गई हैं, तो जो दादियों से, मम्मा से, बाबा से आपने पालना ली है वही पालना आने वाले हर ब्राह्मण को देना, ये दीदी का वर्तमान समय में हम मुख्य रोल देखते हैं, जिसको हम कहेंगे पहले तो वाचा सेवाएं खूब की और अभी दीदी का रोल है महादानी वरदानी बनकर सबको संतुष्ट करते रहना। तो इस रोल में हम दीदी को पाते हैं और भी कई छोटी छोटी जिम्मेवारियां तो इस कैंपस में रहते कंधों पर होती है, लेकिन जितनी ही जिम्मेवारियां उतने ही हल्के रहते हैं, उतने ही निश्चिंत रहते हैं, उतने ही संतुष्ट रहते हैं। हम दीदी के जीवन में हमेशा गुणों की त्रिवेणी सरिता बहते हुए देखते हैं और ये गुण है मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता और इसके बल पे आपने सबके दिलों को जीता है, सबके दिलों में राज्य करते हैं और बाबा की जो लक्ष्य दिया है बाप समान बनना है उस स्थिति की ओर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी हमारी महान हस्ती दीदी से आज हम सुनेंगे। ये भट्टी का लक्ष्य जो है महसूसता द्वारा संपूर्णता, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती इस विषय पर प्रकाश डालते हुए दीदी भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी
अपना भी परिचय दो।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और 1998 में ये जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। समर्पित जीवन की यात्रा हेडक्वार्टर से ही आरंभ हुई। ज्ञान सरोवर अकेडमी में हमें 5 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला। इस पार्क ऑफिस में सेवाएं थी कि जहां पर सेवाएं करते हुए बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने के, जिस पुस्तक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो इतनी मोटी है और लिटरेचर में सेल होती है। स्वयं बाबा ने अपने हस्त कमलों से इसका विमोचन किया था। उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब झोन को बिलोंग करते हैं तो वहां पर रहे, और चूंकि इस पार्क से जुड़े हुए थे, मना रमेश भाई उषा बहन से जुड़े हुए थे, उन्होंने फिर मुंबई कामदेवी में सेवा करने का अवसर दिया। और बाद में चूंकि हमारी समर्पित जीवन की यात्रा तो हेडक्वार्टर से शुरू हुई थी, वापस 2009 में बाबा ने हेडक्वार्टर में बुलाया और 2009 में शीलू दीदी निमित्त बने हमें यहाँ रखने के। तो 2009 से दीदी की जो ग्लोबल ऑफिस है नीचे, उसमें बैठकर जो उनकी सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहना सिखाया। और फिर क्या कहते थे दादी, ओम शांति 3 बार कहकर फिर क्या कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो यही वास्तव में हमारा निश्चय है, हमें संपूर्ण बनना है। उसके लिए हमें महसूसता अंदर में लानी है, अपनी कमियां कमजोरियां खामियां ये सब निकालनी है। तो पहले हमारा जो फाउंडेशन है उसका वो है निश्चय। पिछले रविवार को भी बाबा ने निश्चय का फाउंडेशन पक्का कराया। तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये 4 प्रकार का निश्चय बाबा हमेशा कहते हैं। ये जैसे टेबल के 4 पाए होते हैं, ऐसे ही ये 4 निश्चय अगर पक्के हैं तो ब्राह्मण जीवन कभी हिलेगा नहीं। ब्राह्मण जीवन में एकाग्रता सहज बनी रहेगी, क्योंकि यह संगम युगी ब्राह्मण जीवन हमारा बहुत अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन का हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी अमूल्य है। इसलिए ये सब अमूल्य होने के कारण हम इसको गंवा नहीं सकते हैं। तो कैसे न गंवाएं, उसके लिए अपनी स्थिति को अचल, अडोल, एक रस सदा बनाए रखें, उसके लिए फाउंडेशन है निश्चय। तो स्वयं में निश्चय बाबा ने कहा, तो निश्चय तो अगर हम देखें हर मुरली में बाबा हमें टाइटल देते हैं, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, एक एक टाइटल या एक एक जो स्वमान बाबा हमें देते हैं यही हमारे निश्चय की परख है। बाबा जब कहते हैं तुम होली हंस हो, तो क्या सचमुच हमें वो निश्चय है कि हम होली हंस हैं? होली हंस क्या करता है? हंस क्या करता है? मोती चुगता है, कंकर फेंक देता है, क्षीर लेता है, नीर फेंक देता है। तो जो काम की बात है वो लेना, बेकार बात खत्म करना, ये होली हंस की निशानी है। तो मैं होली हंस हूँ, ये एक ऐसा निश्चय है जिसके आधार से हमारे जो भी संकल्प चलेंगे वो श्रेष्ठ चलेंगे। फिर बाबा कहते तुम विश्व कल्याणकारी हो। अब ये भी एक बहुत बड़ा निश्चय है, जिस निश्चय के आधार पर आज भी बाबा ने कहा तुम किसी से वैर नहीं रख सकते हो। आज की जो मुरली थी, आज तुम किसी से वैर नहीं रख सकते हो क्योंकि तुम सबके शुभ चिंतक बन जाते हो, सबके प्रति कल्याण की भावना होती है और यही शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए रखते हो कि सबका उत्थान हो। और बाबा ने हमें बहुत सुंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्लोगन भी दिया है, हमें बदला नहीं लेना है लेकिन बदल के दिखाना है। तो वैर रखना माना अंदर में घृणा रखना, और फिर वैर रखना माना उसका अकल्याण सोचना, वैर रखना माना उसकी निंदा करना। न जाने कितने सारे अवगुण आ जाते हैं जब किसी से वैर रखते हैं। तो अगर हम ये निश्चय करते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो सबका भला हो, सबका भला हो। ब्रह्मा बाबा जब लौकिक भक्ति में थे तो भी जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, और उसमें जब वो लेते थे ना अंचली जल की, यही कहते थे सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो सबका कल्याण हो तभी तो हम विश्व कल्याणकारी कह सकते हैं अपने आप को। ये नहीं इनका कल्याण हो और इनका अकल्याण हो, इनका भला हो और इनका भला न हो। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, चाहे उसने मेरा कितना भी अकल्याण किया है, लेकिन मेरे अंदर से यही निकले उसका भी कल्याण हो। तो जब ये भावना जागृत होती है तब ये स्वमान हमें अनुभव होता है। फिर बाबा हमें दूसरा भी टाइटल देते हैं, बाबा कहते हैं तुम आत्माएं सारे विश्व का श्रृंगार हो। कितना बड़ा टाइटल है। तुम हीरो एक्टर्स हो, तो हीरो एक्टर पर ही तो सारी कहानी ड्रामा की या फिल्म की होती है। तुम विश्व का परिवर्तन करने वाले हो। तो जो जो बाबा टाइटल हमें देते हैं उनका केवल नशा ही नहीं है पर साथ साथ वो कर्तव्य भी करने हैं। तो जब कर्तव्य करेंगे तब तो वो नशा कायम रहेगा, वो कर्तव्य करेंगे तब तो याद आएगा कि मैं कौन हूं। इसलिए हर वक्त हर दिन नया टाइटल जो बाबा हमें देते हैं उसको याद रखो। और इस निश्चय के आधार से आगे बढ़ो। कभी हीनता की भावना आ जाए तो याद करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति कभी भूले नहीं। अगर कमजोर संकल्प आएंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहलाएंगे। आज बाबा ने यह भी कहा, निर्भय बनना है। सबसे बड़ा डर अगर किसी को होता है वो मृत्यु का डर होता है। सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर। चाहे और डर भी बहुत प्रकार के होते हैं, किसी को किससे डर लगता है, किसी को किससे डर लगता है, लेकिन सबसे ऊपर टॉप पर उस लिस्ट में मृत्यु का डर। कई लोग तो उस डर के मारे मुख से ही शब्द ऐसे ही निकालते, हाय मर गई, हाय मर जाऊंगी, हाय मर गई तो मर गई, मर जाऊंगी, हाय मर न जाऊं, ऐसे भी कई सोचते हैं। तो ये हाय हाय करते और उसमें मरना शब्द बोलते हैं, माना मृत्यु से कितना डर है। और बाबा ने हमारा ये डर निकाल दिया। निकाल दिया ना, निकाल दिया या अभी भी वो डर है? हाँ, अगर कुछ भी हो जाए, चलो मैं आत्मा उड़ गई, वतन में क्या दे, अभिमान तो छोड़ दिया है। तो देह से न्यारा बनने का जो बाबा ने सुंदर तरीका बताया, तुम आत्मस्मृति में रहो, आत्मा अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाए, ये सकाल तख्त पर विराजमान हो जाए, तो मैं तो अकाल आत्मा हूँ। जैसे बाबा अकाल मूरत है, मैं आत्मा भी अकाल मूरत हूँ। ये मेरा काल तख्त है, मैं मालिक बन करके इंद्रियों द्वारा कार्य करूँ, करण करावन हार बन जाऊं, मैं करण हार और इंद्रियों से करवा रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक न्यारी स्थिति हो जाएगी, मैं और फिर मेरा ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि पाप के यही दो दरवाजे हैं, एक मैं दूसरा मेरा। कई लोग कहते हैं ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है, ऐसे कई दावा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झूठ तो यही है, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना, ये कितना बड़ा झूठ है। मैं तो वास्तव में एक आत्मा हूँ, इस सृष्टि रंगमंच पर एक एक्टर हूँ, मैं आत्मा तो परम धाम का निवासी हूँ, मैं आत्मा तो यहाँ पाठधारी हूँ। फिर चाहे मुझे डॉक्टर का पाठ मिला, इंजीनियर का पाठ मिला, हाँ कोई वकील का पाठ मिला, माता का पाठ मिला, पिता का पाठ मिला, ये तो पाठ है, ये तो इस ड्रामा के इस जन्म का पाठ है। और जब ये जन्म पूरा होगा तो ये पाठ भी खत्म हो जाएगा। कितनी भी पढ़ाई कर लो और वो उस जन्म तक की वो पढ़ाई है, फिर अगले जन्म में फिर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि इस जन्म में डिग्री ली तो दूसरे जन्म में वो डिग्री चलेगी, चलेगी क्या? फिर पढ़ना पड़ेगा ABCD। पहले पिछले जन्म में कितने भी हम पढ़े लिखे थे, वो डिग्री हाथ में ली और वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुआ और हम वो ड्रेस पहनी और वो लेकर के हम घर आए, घर आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गए। वो डिग्री भी पूरी हुई, वो कॉन्वोकेशन भी पूरा हुआ, वो जो ड्रेस पहनी थी वो भी खत्म। फिर अगले जन्म में फिर नए सिर पड़ो। तो इसलिए ये एक जन्म का खेल है। जो संबंध भी हमारे बनते हैं वो सब एक जन्म के लिए, हिसाब किताब पूरा हुआ कोई किसी का नहीं। तो देखो बाबा ने हमें इतना उपराम बनाया, पर ये निश्चय हो, और जब ये निश्चय होगा पक्का, तब हम न्यारे प्यारे बन सकेंगे, तब हमारे सामने जो विघ्न आएंगे उन विघ्नों को हम पार कर सकेंगे। फिर दूसरा निश्चय बाबा कहते हैं, बाप में निश्चय, जो है जैसा है हाँ उस रूप से निश्चय, और मैं बाबा का हूँ ये निश्चय। कई कहते ना, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो बाबा कहते ये जितनी बार जैसे मैं कहा ये झूठ बोला, उसी प्रकार ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा कहना एक चोरी है, क्योंकि जब मैं आत्मा इस संसार में आई तो कुछ लेके आई क्या? कुछ भी लाई नहीं। मकान, माड़ी, ये सब जमीन जायदाद, धन संपत्ति, जो कुछ भी है, कुछ भी लाई नहीं। और मैं जब चली जाऊंगी तो ये कुछ भी लेके नहीं जाऊंगी, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा वही है जो मैं अपने साथ ले आई। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, ये अपना भाग्य लेकर आया है। ये थोड़ी कहा कि मकान मारिया पिछले जन्म की लेकर आया, क्या लेकर आया? भाग्य लेकर आया। और भाग्य कैसे बने? संस्कारों से बने। भाग्य कैसे बने? कर्म से बने, जो कर्म पिछले जन्मों में किए हैं, तो भाग्य बना। और जब शरीर छोड़ता है तो क्या कहता है, क्या कहते हैं? अपना कर्म लेकर गया, मकान मारिया कुछ नहीं लेके गया, सब कर्म लेकर गया, सबकी दुआएं लेकर के गया। तो जो मेरे साथ चलने वाली चीज है उसी पर ध्यान देना है, इसलिए वही मेरा है जो मेरे साथ चलेगा। इसलिए जितनी बार संसार की वस्तु, वैभव या जो भी व्यक्ति उनके लिए मेरा मेरा कहते हैं, ये चोरी है। जितनी बार मैं कहते ये झूठ है ना? तो देखो, झूठ और चोरी है तो क्या कहेंगे, पाप करते हैं ना? कोई कहे मैंने कभी पाप नहीं किया जीवन में, ये निसारा दिन मैं मेरा करते हैं, तो ये क्या है? ये भी तो झूठ और चोरी, ये भी तो पाप है। इसलिए मैं कौन, मेरा कौन? फिर बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो, इतना निश्चय हो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस। अगर मेरा है तो केवल एक बाबा है, अगर मैं हूं तो मैं आत्मा हूं। फिर कैसी आत्मा हूं? जो टाइटल बाबा ने दिए वो आत्मा हूं। तो जब ये मैं और मेरा को हम ट्रांसफर कर देते हैं, उस निश्चय में हम चलते हैं, तो हमारी स्थिति बहुत बहुत स्थिर बन जाती है। फिर कई बार ये स्थिति डावाडोल क्यों होती है, फिर इसका तीसरा कारण है परिवार में निश्चय नहीं। यही परिवार मेरा सत्युगी परिवार बनेगा, लेकिन इस परिवार में भी निश्चय चाहिए, यही परिवार बनेगा। जो बाबा के बनते नहीं है, ज्ञान में नहीं चलते हैं, शिव बाबा को नहीं पहचाना है, वो थोड़ी परिवार सतयुग में आएगा। इसलिए सच्चा परिवार तो यही बनता है, जो बाबा कहते हैं हम सब साथ में जाएंगे, सजनी बन के उस साजन के साथ जाएंगे, बराती तो सारी दुनिया आएगी, हम तो सजनी बन के जाएंगे। और हमारे साथ सजनी रूप में कौन चलेंगे उस साजन के पास? जो बाबा को पहचानेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये सच्चा परिवार है। लेकिन अगर इस परिवार में अगर इनकी कमियां कमजोरियां ही देखते रहेंगे, तो फिर वो कमियां कमजोरियां हमारे में भी आ जाएगी। तो कई कहते इतने पुराने और फिर भी ऐसी इनकी कमजोरी है, ये कमी है, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि राजधानी बन रही है। शिव बाबा आए हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो कर रहे हैं, पर साथ साथ राजधानी भी स्थापन कर रहे हैं, और सब यहीं तैयार हो रहे हैं। तो कोई दास दासी बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई नौकर, क्या क्या बनेंगे, सब चाहिए यहाँ। इसीलिए अगर किसी का व्यवहार ठीक नहीं है या कुछ भी है जो श्रीमद के खिलाफ है मानो, तो वो क्या पद पाएगा? ये ऐसे नहीं, ये ऐसे क्यों करता है, इतना पुराना और ऐसे करता है, नहीं। तो इसीलिए वो भी नहीं सोचना है। कई बार है ना, किसी के हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी के और देखने पेशेंट, अब उसको वो बेचारा तड़प रहा है, बहुत कष्ट है उसको, तो हम उसको सहानुभूति देंगे ना, बेचारा कमजोर है तो कष्ट है, ये थोड़ी अच्छा है, अच्छा है तुम अपने कर्मों का फल पा रहे हो, ऐसे कहेंगे क्या? ऐसे कहेंगे क्या? हाँ, ये तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी भूल हो जाएगी। हाँ, तुम ये अपना दुख सहन कर रहे हो, करो करो करो, अपने पाप का फल भोगो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। दया आती है, बेचारा, तो दया आती है, तो वो जो कमजोर आत्माएं हैं उन पर दया करनी होती है, न कि उनको कोई कोसना होता है या उनसे घृणा करनी होती है, क्योंकि वो कमजोर है। चलो वो आपसे नफरत करता है, लेकिन वो आत्मा कमजोर है। हम रास्ते पर जाते हैं, कोई ऐसा पागल व्यक्ति है, वो मिलते हैं रास्ते पर, पागल घूमते रहते हैं, देख पिया हुआ है या कुछ भी, और हमको देख करके कहेगा चल पागल, कहेगा हमको, कहेगा पागल कहेगा, तो हम क्या कहेंगे? तू पागल? हाँ, ऐसे कहेंगे क्या? पता है बेचारा, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? दया रखेंगे, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो इसीलिए हमको दया करनी होती है। तो परिवार में निश्चय कि यही परिवार मेरा सतयुगी परिवार बनना है। तो कोई कैसा भी है, उसका वो पार्ट है, उसका वो पार्ट है। जब ये समझते हैं तो उनके पार्ट पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपने पार्ट पर ध्यान देना है। हाँ, कोई ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा में अब जिसका जिस समय पार्ट होता है वो स्टेज पर आता है। अब पार्ट नहीं है तो ग्रीन रूम में बैठते हैं और हर एक अपना अपना पार्ट याद करता है कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है। हाँ, तो अपना पार्ट याद करता है। अब वो जो अपना पार्ट याद कर रहा है, हम उस पर ध्यान देंगे या अपने पार्ट पर ध्यान देंगे, क्या करेंगे? हाँ, मुझे क्या बोलना है वो ध्यान देंगे, या वो उसको क्या बोलना है वो ध्यान देंगे? वो डायरेक्टर जाने, वो डायरेक्टर समझे ना, मैं क्यों उसमें पढ़ू, मुझे अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाना है। तो इसीलिए हम दूसरों के पार्ट पर ध्यान नहीं देंगे, उनको तो बाबा दे ही रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा, हर मुरली में ध्यान खिंचवा रहे हैं, तो वो उनका फर्ज बनेगा, वो उनका पार्ट है। वो शिव बाबा जाने, धर्मराज जाने, हमारा काम क्या है? हमारा काम इतना है जो मैं अच्छे से अच्छा पार्ट बजाऊं। एक्टर यही बुद्धि में रखता है, मेरा पार्ट सबसे अच्छा हो, ऐसा अच्छा पार्ट हो जो सब कहे वंस मोर, है ना। कोई स्टेज पर कोई अच्छी एक्टिंग करता है तो लोगों को बहुत पसंद आती है, तो क्या कहते हैं? हाँ, वंस मोर कहते हैं ना, क्योंकि अच्छा लगा। तो हमारे लिए भी वंस मोर हो, या ये तो जाए यहाँ से, हाँ छुट्टी करे। ऐसे कई लोग लेक्चर देते हैं ना, तो ऐसा बोरिंग हो जाता है लेक्चर, तो बीच में तालियां बजा देते हैं, हाँ भाई पूरा करो जल्दी, लेकिन वो समझता है ये मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ इसलिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए बजाते हैं ताकि पूरा करे। परंतु जिसने बहुत अच्छा बोला तो सचमुच लोग कहेंगे ना, हाँ वंस मोर। मुझे याद आता है कोई एक्टर आए थे आर्ट एंड कल्चरल विंग में, तो अभी उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, वो तो मैं सब नहीं जानती क्या, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। और वो जो उसके शब्द थे बहुत ही सुंदर शब्द थे, तो जब वो भाषण करने खड़ा हुआ तो अपने बहुत अच्छे ढंग से भाषण किया, लेकिन एक चिटकी उसके सामने आई। और चिटकी क्या सामने आई? आपने जो उस फिल्म में वो जो आपने जो डायलॉग बोला था ना, वो आप फिर से रिपीट करो, हमें बहुत अच्छा लगा। तो देखो कहाँ उसको, उस व्यक्ति को याद आ गया वो डायलॉग जो बहुत अच्छा था, और सचमुच उसने वो इतना अच्छी तरह से फिर से बोला, जो फिर का फिर वंस मोर। तो देखो कोई भी अच्छा कुछ भी होता है तो क्या कहेंगे? वंस मोर। तो हमारा भी पार्ट कैसा हो? ऐसा पार्ट हो जो वंस मोर कहे, ये नहीं कि हाँ जाए यहां से, जाए तो अच्छा है, ऐसे तो नहीं ना। दुआएं मिले ऐसा हमारा पार्ट हो, बद्दुआएं ना मिले, क्योंकि ये दुआएं ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। हमारी दादी जानकी जी बताते थे कि कैसे यज्ञ के अंदर, वहां तो संगठन में रहते थे, तो संगठन में रहते थे तो एक बहन थी जिसके साथ कोई रहना नहीं चाहता था, कोई नहीं रहना चाहता भी, साथ में तो रहना होगा ना, अकेले अकेले थोड़ी किसको रखेंगे, तो साथ में कोई रहने को तैयार नहीं था। तो बाबा ने दादी को कहा, तुम रहोगी इनके साथ? तो कहा ठीक है, हाँ मैं रहूंगी। और सचमुच वो उनके साथ रही और उनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जो बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बदल गई। और इतना बदल गई कि वो और किसका नहीं सुनती थी, दादी जो कहे वही सुनती थी। इतना वो बदल गई, दादी के प्रति वो प्यार बढ़ गया। तो देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि अंदर में शुभ भावना रखी, शुभ भावना रखी तो वो बदल गई। तो इसीलिए बाबा भी क्या कहते हैं, परिवार से भी प्यार हो, चाहे वो कैसा भी है, यही देवता बनने वाले हैं, लेकिन क्या पद होगा वो अभी पता चल जाता है। इसीलिए ये नहीं सोचो ये तो जाके दासी बनेगी, कहना थोड़ी होता है ये तो जाके दास बनेगा, हाँ ऐसे ये बनेगा, नहीं, हम तो उनको उसी शुभ भावना से देखें, ये है दृष्टि में कल्याण की भावना। फिर बाबा कहते ड्रामा, ड्रामा में भी निश्चय, इतना निश्चय पक्का हो, पर ड्रामा को उल्टे रूप में नहीं लेना है। कई ड्रामा को उल्टे रूप में लेते हैं, उल्टे रूप में कैसे लेते हैं, जो ड्रामा में होगा वो ही होगा, इसलिए पुरुषार्थ क्यों करें, बहुत ओके प्रश्न होते हैं। ड्रामा में जो होगा वही तो होना है, जो कल पहले हुआ था वही तो होना है, फिर पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन पुरुषार्थ भी तो ड्रामा में है ना, ये भूल जाते हैं, पुरुषार्थ क्यों करें ये थोड़ी कहना होता है। ड्रामा हमारे कर्म के आधार पर बनाए, क्या होना ये तो पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हमारा फर्ज क्या बनता, अच्छे से अच्छा पाठ बजाए, अच्छे से अच्छा कर्म करें, फिर हो गया फिर कहो ड्रामा। तो ड्रामा को पहले नहीं सोचो, ड्रामा को बाद में सोचो, होना तो वही है जो कल पहले हुआ था, वो तो पता है, लेकिन ये पहले नहीं सोचो, जब हो जाए तब कहो कि ड्रामा में ऐसा ही था, इसलिए बुद्धि को फुल स्टॉप, ड्रामा। तो ड्रामा को सीधे रूप में लो, उल्टे रूप में नहीं लो। हमेशा जो भी कुछ होता है वो प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ है। ड्रामा में ये भी निश्चित है कि प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है। आप बीज डालो ही नहीं और कहो वृक्ष हो जाए, फल मिल जाए, कैसे मिलेगा, बीज तो डालना है ना, तो बीज तो पुरुषार्थ ही है। अच्छा चलो कोई कहे नहीं, कोई बात नहीं, मैं पुरुषार्थ कुछ नहीं कर रहा हूं, और कोई आप किसी को कहो पानी लाओ, अच्छा पानी ले आएगा, बोलाएगा आप नहीं गए पानी लाने, पानी आपके आगे रखा, अभी कहेगा चलो पानी पीना है, परंतु चलो खुद ग्लास न भी उठाए, कोई और आपके मुंह में डाले, लेकिन अंदर किसको लेना है? अंदर किसको लेना है, वो दूसरा थोड़ी लेगा, दूसरा लेगा तो उसकी प्यास बुझेगी आपकी बुझेगी, अंदर तो आपको लेना है ना। तो जबकि अंदर आपको लेना है तो पुरुषार्थ तो आपको करना होगा, भले और सब ने सब कुछ और किसी ने कर लिया, भोजन की थाली बहुत सुंदर रूप से तैयार होकर आपके सामने रखी गई, अब खाना तो आपको है ना, चलो आपके मुंह में भी कोई डाले, पर निगलना तो आपको ही है ना, या और कोई निगलेगा अंदर। इसीलिए कोई भी कर्म जब हम करते हैं उसी की प्रारब्ध बनती है, प्रारब्ध ऐसे नहीं बनती है, पेट आपका तब भरेगा जब आप उसको अंदर डालेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को उल्टा मत लो, अगर उल्टा लेंगे आपको ही नुकसान होगा, जैसे चाकू होता है ना, चाकू नाइफ, अब उस चाकू को वो एक तरफ ही धार होती है, दूसरे तरफ तो ब्लंट होता है ना, वो लगता नहीं है, लेकिन अगर आपने उल्टा पकड़ लिया चाकू तो क्या होगा, चीज कटने की बजाय आपकी उंगली कट जाएगी। अब उंगली तो आप नहीं काटना चाहते हो, चाकू से वो चीज को काटना चाहते हो, तो जो चीज धार वाली चीज है उसको नीचे रखना पड़ेगा, तभी तो वो चीज कटेगी। इसी प्रकार कोई भी हमें प्रारब्ध पानी है उसके लिए कर्म बहुत जरूरी है, और यही आत्मा कर्म संस्कार बन जाते हैं और वही संस्कार आत्मा अपने साथ ले जाती है। तो ड्रामा का ज्ञान हमें इतना स्थिर करता है जो बाबा कहते तीन बिंदी लगाओ। लेकिन पहले ड्रामा को याद मत करो। अच्छा कोई कहे नहीं नहीं मैं तो ड्रामा को याद करूंगा और मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा, जो ड्रामा में होगा वो। अच्छा बैठ जाओ, कहाँ तक बैठेंगे, कहाँ तक बैठेंगे, कहाँ तक बैठेंगे, कुछ करना तो हो पड़ेगा ना। कहाँ तक, कोई कितना भी सुस्त हो, मुझे कुछ नहीं करना है, चलो लेटे रहो लेटे रहो, आखिर उब जाएंगे। क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं। कई कहते हैं हम इस संसार में क्यों आए, क्या पड़ी थी भगवान को ये संसार रचने की और हम सबको पाठ ये सब ड्रामा बनाने की, सब क्या जरूरत थी। तो भगवान को कोई चीज चाहिए नहीं हमसे, लेकिन जो आत्मा अनादि अविनाशी है उसमें कर्म का संस्कार भी अनादि अविनाशी है। भले वो एक जन्म ही केवल आए लेकिन उसको कर्म जरूर करना है, हर वक्त परम धाम में नहीं रह सकती है। चलो हम सोचे भी नहीं मुझे आज कुछ नहीं करना है, इतनी सुस्त बन जाओ कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आप बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, सचमुच बोर हो जाएंगे। कोई व्यक्ति बड़ा सुस्त हो मान लो, अब अचानक गिर गया, हड्डी टूट गई, अब पैर की हड्डी टूट गई, डेढ़ महीना प्लास्टर, लेटे रहो, लेटा लेटना ही है, प्लास्टर चढ़ गया तो रोज डॉक्टर कहेगा डॉक्टर ये प्लास्टर कब निकलेगा, प्लास्टर कब निकलेगा। ये थोड़ी कहेगा अच्छा है मैं लेटा रहा हूं मुझे कुछ करना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बोर हो जाएगा, थक जाएगा। तो इसीलिए जितना हम कर्म करते हैं उतना ही आत्मा का वो प्रारब्ध बनती है। पर हो जाए कर्म फिर बाबा पर छोड़ दो। इसीलिए गीता का ये भी सार है, कर्म योग का जो सिद्धांत है गीता के अंदर, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। करने वाली मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ही इसका फल पाऊंगी, परंतु फल की चिंता मत करो, फल शिव बाबा पर छोड़ दो। इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। कई लोग तो फल पहले सोचते हैं फिर कर्म करते, इससे मुझे फायदा क्या होगा। तो चलो कर्म करो और इसमें फायदा क्या होगा ये भी क्या सोचना है, कि मैं अगर सफल हो जाऊंगा तो ये बाबा की देन है। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा किसी के अंदर बहुत विशेषताएं हैं, कलाएं हैं, लेकिन ये किसने दी है, किसने दी है, पहले थोड़ी हम जानते थे। अभी जो हम भाषण करते हैं, क्लास कराते हैं या जो कुछ भी ज्ञान सुनाते हैं, जब तक बाबा के नहीं बने थे ये ज्ञान था क्या हमें, हम ये ज्ञान ऐसे सुना सकते थे क्या। पर अभी कैसे सुना पाते, क्योंकि बाबा का दिया हुआ ये ज्ञान है, हमने बाबा से पाया है। तो अगर कोई हमारी महिमा भी करता है, आप बहुत अच्छा क्लास कराते हो, आप बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत महिमा करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये बाबा की देन है। मुझे याद है जब बाबा ने ही मुझे ये वरदान दिया था कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, ये बाबा ने वरदान दिया था, बताया ना इन्होंने परिचय में। तो जब बाबा ने ये वरदान हमें दिया, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, बस ये वरदान मिला तो मैं तो आश्चर्य खाने लगी, ऐसा वरदान बाबा ने दिया है। लेकिन अभिमान थोड़ी आया कि हाँ मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी है, लेकिन मेरे मन में क्या प्रश्न उठा, बाबा ने इतना बड़ा वरदान दिया है तो जरूर बाबा को मुझसे कोई बड़ा काम करवाना है। तो पहले से ही शक्ति भर दी कि ये काम आपको करना है। अभी क्या काम करना है वो उस समय तो कुछ पता नहीं था, लेकिन बाबा ने ये शक्ति भर दी मेरे अंदर ये वरदान दे करके कि तुमको ये बड़ा काम करना है। तो पहला संकल्प ही आया, फिर दूसरा संकल्प आया कि अगर सरस्वती मेरी जुबान पर है, बाबा ने जैसे कहा है, तो इस मुख से कोई ऐसा अपशब्द, अज्ञान का शब्द, कोई बुरा शब्द, कोई गलत शब्द इस मुख से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो सरस्वती का की जुबान थोड़ी होगी। सरस्वती जुबान पर माना केवल ज्ञान ना, और थोड़ी कुछ निकलना चाहिए इस मुख से। तो देखो ये इतना बड़ा संकल्प उस समय किया, और सचमुच वो वरदान बाबा का मिला। उसके बाद ये टेलीविजन के प्रोग्राम शुरू हुए, और सबसे पहले बाबा ने, दादी जी ने हमको भेजा, जो जी टीवी, जो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारियों का टेलीविजन में शुरू हुआ, बाबा ने ये सेवा दी। तो किस आधार पर दी, पहले तैयार किया बाबा ने। और सचमुच बाबा ने, मुझे उस समय याद आया जब ये टेलीविजन का निमंत्रण मिला कि आपको टीवी में ऐसे आधा घंटा लेक्चर देना है वैल्यूज पर, तो उस समय मुझे याद आया बाबा ने देखो वरदान पहले से दे दिया है, और कैसे सब कुछ मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया जो बात मत पूछो। फिर बाबा ने मुझे हर की पौड़ी का टाइटल दिया, कि मेरे से बाबा ने पूछा आप कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो और भी बहुत है, आप कौन सी विशेष गंगा हो, तो अभी दूसरी प्रकार की गंगा कौन सी होती है, तो मैंने कहा बहती गंगा हूं, बहती गंगा बहती जाती है ना। तो बाबा ने कहा नहीं, बहती गंगा तो वो है जो बहती गंगा है वो है जो सेंटरों पर रहती है, वो सेंटरों पर बहने आज इस सेंटर पर, कल ट्रांसफर हो गए दूसरे सेंटर पर, परसों तीसरे सेंटर पर, तो वो बहती रहती है, क्योंकि जिज्ञासु तो वहीं के होते हैं, वो तो वहीं रहते हैं, उसी सेंटर पर जाते हैं, टीचर बदलती रहती है, होता है ना। तो इसलिए बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, आप कौन सी गंगा हो। तो अब मुझे तीसरी गंगा तो आई नहीं, आया नहीं। तो तब बाबा ने मुझे कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। हर की पौड़ी की गंगा माना उस पानी तो बहता जाता है, लेकिन वो हर की पौड़ी जो स्थान है हरिद्वार में, उसका महत्व है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, दुनिया भर के लोग हर की पौड़ी में स्नान करने आते हैं। तब बाबा ने ये वरदान दिया तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, सारी दुनिया तुम्हारे में नहाएगी। तो सारी दुनिया यहाँ आएगी तब तो ना आएगी ना, मैं तो ही सब जगह जाऊंगी तो सब यहाँ आएगी, क्योंकि उसके पहले मुझे संकल्प चलता था। और बाबा ने कैसे उस संकल्प को बंद किया, क्योंकि मैं विदेश में रही, बहुत स्थानों पर रही, ले और फिर 76 में दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, क्योंकि फॉरेनर्स आ रहे थे, तो विदेश का भी अनुभव था, शिविर भी कराती थी, तो अनुभव ले चुकी थी काफी स्थानों का। और फिर मधुबन में जरूरत थी, तो दादी जी ने कहा भी तुमको यहाँ सेवा करनी है, तो मैंने कहा जी दादी आप जैसे कहेंगे। तो 3 साल तो मैं कहीं नहीं गई मधुबन में, और बहुत सेवाएं हुई नो डाउट, लेकिन थोड़ा संकल्प चला क्या मैं अभी बाहर कहीं नहीं जाऊंगी क्या, कहा बाहर सेवा के लिए नहीं जाऊंगी क्या। तो उस समय बाबा ने ये वरदान दिया कि आप कौन सी गंगा हो, तो सारी दुनिया तुम्हारे में ना आएगी। उसके बाद तो मेरा संकल्प ही बंद हो गया कि कहीं मुझे जाना भी है, यहीं रहना है। लेकिन वो संकल्प बंद हुआ, और उसके बाद बाबा ने और खूब भेजा, मधुबन बेस बना के सारी दुनिया का सैर कराया, सारी दुनिया का सैर कराया। सचमुच कितने देशों में बाबा हमें भेजते हैं, अभी भी होकर आई, यूरोप गई थी मैं राखी पर, हर साल जाना होता है, लेकिन बाबा का ये वरदान कितना काम आया। और कैसे अभी देखो सेवाएं तो कितनी बेहद की हो गई है, अभी उपराम स्थिति हमारी, कई कहते हैं यहाँ आओ वहाँ आओ, कितने निमंत्रण मिलते हैं, कहते हैं नहीं अभी कहीं नहीं जाना है, अभी कहीं नहीं जाना है। लेकिन बाबा ने सारी दुनिया को यहीं बुला लिया। इस साल तो इतनी सेवाएं हुई है मधुबन में, शांतिवन में, इतने प्रोग्राम, 3-3 कॉन्फ्रेंसेस, 4-4 कॉन्फ्रेंसेस एक साथ, ऊपर बठिया और कॉन्फ्रेंसेस, फिर अभी विदेशियों का प्रोग्राम, ये सब देखो सारी दुनिया यहाँ आती है। तो संकल्प भी नहीं चलता कि कहीं जाना भी है, कोई कहते भी है तो भी मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि बाबा ने इतना भरपूर कर दिया जो और कुछ संकल्प मन में चलता ही नहीं है सचमुच। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बाबा को पहचाना। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, ड्रामा का भी ज्ञान दिया, और इस ड्रामा के ज्ञान के आधार से हम अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। तो कितने निश्चय बताए, हाँ, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। और ये निश्चय का फाउंडेशन अगर पूरा पक्का है तो अंगद समान हम रहेंगे, कोई हमें हिला नहीं सकेगा, और एक बाबा दूसरा न कोई। तो ये तीन दिन जो आप बठी करेंगे बस एक ही लगन में रहना है, एक बाबा दूसरा न कोई। बुद्धि कहीं न जाए, कहीं न जाए, अगर कहीं बुद्धि गई तो अपने आप को चेक करो, ये मैं अपने तपस्या करने आया हूँ, तपस्या करने आई हूँ, मेरी बुद्धि और कहीं नहीं जानी चाहिए। अभी देखो हमारे सामने राजबेन जी आ गए, राजबेन वेलकम। तो 7 बजे हैं और अभी और दूसरा प्रोग्राम है हम लोगों का, तो अभी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम शांति जी, जी क्या कहते हैं, चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो अवश्य ही 4-5 दिन की भट्टी के लिए आपका लक्ष्य क्या है, दीदी ने स्पष्ट कर दिया है आपको, और उसी अनुसार इस भट्टी को, उसमें धारणाओं को बनाए रखेंगे तो भट्टी आपकी सफल होगी। तो दीदी का एक हाथ हिलाकर पुनः पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।